हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 21 एंड 22। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाङ्गनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सूते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक नंबर 21। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। महारानी कुंती कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शब्दात् कृष्णाय अर्थात भगवान को, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को च तथा नंद गोप कुमाराय नंद तथा ग्वालों के कुमाराय अर्थात पुत्र को, गोविंदाय अर्थात भगवान को जो इंद्रियों तथा गौवों के प्राण हैं, नमः सादर नमस्कार, नमः नमस्कार। अनुवाद, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों को उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी असीम अहितु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की उपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जनते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में जो उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत ही पावन है, सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की उपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनकी उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि वे वसुदेव तथा देवकी पुत्र रूप में ना जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी वत्सलता से संबोधित ना करती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। ब्रजभूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की समता नहीं हो सकती, क्योंकि वे मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं की आदि रूप हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए थे, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है और उनमें भी गोपियां विशेषतया भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदया है, जिसका अर्थ है कि मानवीय प्रसन्नता बहुत कुछ नहीं, उन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरा गौ रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर और बहुत ही सार गृहित कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थनाएं कर रही हैं, और आज का जो श्लोक है वो अत्यंत ही विख्यात है, बहुत ही विख्यात है। सब अक्सर जो भी कथावाचक हैं वो इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। हम पहले जितने श्लोक हो गए हैं उनको एक बार रीड करेंगे ताकि हमें भी ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न हो और हम इस श्लोक को अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना स्टार्ट की श्लोक नंबर 18 से। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप इस प्रकृति से परे हैं, कोई भी आपको नहीं देख सकता, यहाँ तक कि आप समस्त जीवों के अंदर और बाहर स्थित रहते हैं। माया जवनी काचन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृश्या नटो नाट्य धरो यथा। आप अपनी योग माया के पर्दे से स्वयं को ढके रहते हैं, इसलिए और आप अदोक्षज हैं, आप अव्यय हैं, आपको कोई भी जो मूढ़ दृष्टि लोग होते हैं, जो अपने आप को इस संसार में ही आनंदित करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति ही जिनका लक्ष्य है, वो मूढ़ दृष्टि लोग आपको नहीं समझ सकते। नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार एक अभिनेता अभिनय करता है उसी प्रकार आप इस संसार में आकर अपनी कलाकारी करते हो और मूढ़ लोग आपको नहीं समझ सकते। तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम, उसी के साथ साथ जो परमहंस होते हैं, मुनि होते, अमलात्मा होते हैं, वो भी आपको नहीं समझ सकते, लेकिन आप अपनी इतनी विचित्र लीलाएं करते हैं, इतनी सुंदर मनोहारिणी लीलाओं के द्वारा आपके आने का कारण क्या है? इस संसार में आप आते हो भक्ति योग विधानार्थम, ताकि समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करें। इतना बताने के बाद कुंती महारानी कहती हैं, कथम पश्येम हि स्त्रिया, परंतु आपके इस समस्त अद्भुत लीलाओं के विषय में, आपके प्राकृत्य के विषय में, आपकी वास्तविकता के विषय में मुझे सी स्त्री भला क्या जान सकती है? वास्तव में भक्तों, यहाँ पर कुंती महारानी अपनी दीनता प्रकट करती है। ये वास्तविक लक्षण है एक शुद्ध भक्त का, वो सदैव यही प्रकट करता है, यही हृदय के अंदर यही सोचता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के विषय में कुछ बोल सकूं, भगवान के विषय में कुछ समझ सकूं, भगवान के विषय में कुछ बोलना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की वश की बात नहीं है। इसी बात को कुंती महारानी यहाँ पर कह रही हैं कि आप तो परमहंसों मुनि अथवा अमल आत्मा योगियों के द्वारा जाने गया हो, उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हो। मुझे जैसी साधारण स्त्री, और साधारणतया स्त्रियों के अंदर बुद्धि भी कम होती है, तो फिर आपको कैसे समझ सकती है। सब कुछ भगवान के विषय में बता दिया कि आप आदि पुरुष हैं, आप तो समस्त सृष्टि से परे हैं, आप अपनी माया के द्वारा छुपे रहते हैं और आपको मूढ़ लोग नहीं समझ सकते, लेकिन आपने संसार में अवतरित होते हैं क्यों, भक्ति योग विधानार्थ। सब कुछ बता के बोल रही हैं। कथम बश्ये मई स्त्री, अब क्या रह गया बुआ जी, यही तो है जो आप बता रहे। और आगे कहती हैं, वास्तव में यहाँ पर देखा गया है कि स्त्रियों को अधिक बुद्धिमान नहीं समझा जाता, क्योंकि वो किसी भी बात पर बहुत अधिक जल्दी विश्वास कर लेती हैं, है ना। वो तर्क वितर्क नहीं करती हैं, जैसे किसी भी कथा में बैठेंगी और जो भी चाहे कथावाचक बोल रहा होगा ना, तो आंखें बंद करके सर हिला करके ऐसे हाँ हाँ। और देखा जाता, श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि बड़ी संख्या में स्त्रियां ही होती है, चाहे कोई भी सम्मेलन होता है तो बहुत संख्या में आती हैं स्त्रियां। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, प्रत्येक देश में प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। वास्तव में ये बहुत बड़ा गुण है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जैसे अपनी मर्जी से प्रचार कर रहा होगा कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, भगवान ऐसे अलख निरंजन है, वो क्या है ब्रह्म ज्योति है, या कुछ भी इस तरह का ज्ञान वो सुनेगी, तो भी उसकी ओर भी अब स्वभाव से ऐसा है कि वो लोग कोई तर्क वितर्क करती नहीं है, जो उसने बोला है वही सही है, तो इतनी इनोसेंट होती है इसलिए बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। और ये एक तरह से देखा जाए तो गुण है, क्योंकि भक्ति में भी अब भगवान के विषय में कोई तर्क वितर्क नहीं करती है और बोलती हाँ ठीक है कृष्ण भगवान है, कृष्ण को सरेंडर करती है, स्वभाव से भावुक होती है, प्रेम करती है, प्रसाद बनाती है, अर्पण करती है, भगवान के श्रृंगार करती है इत्यादि, बहुत जल्दी भक्त बन जाती है। परंतु ये गुण उस समय अवगुण बन जाता है जब उनको गलत शिक्षण दिया जाता है। जैसे अब एक स्त्री बोलेगी ना, मैंने संतोषी माता का व्रत किया है, 16 शुक्रवार रखे तो उसके बाद में मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ, तो बोलेगी दूसरी हाँ ठीक है कल से मैं भी शुरू कर रही हूँ। कोई बोलेगी मैंने इतनी दफा ना थर्सडे के दिन वो चने और गुड़ का प्रसाद लगाया तो उसके बाद मुझसे ये हुआ, मतलब ये फायदा हो गया, मेरे घर में इतना धन आने लगा, या कोई भी इस तरह बोलेंगे। अब मैंने इतना किलो अगर बना के प्रसाद अर्पण किया तो फिर इस दिन मंडे के दिन ये किया तो ये हुआ, ट्यूसडे के दिन ये किया, मतलब हर दिन के बारे में कोई ना कोई अगर उनको दूसरी कोई महिला बताती है ना कि इससे मुझे ये फायदा हो। अब फायदा उसको बेटा पैदा होना था तो हो गया ना, इससे उस चने या गुड़ की कोई लिंक नहीं हो उसका, लेकिन उसको ऐसा बुद्धि इतनी मासूम होती है, वो उनको लगता है कि इसी से प्राप्त हुआ है, तो फिर दूसरी जो महिला को बताएंगे ना फौरन ग्रहण कर लेंगे उसको, हाँ तुमने ऐसा किया मैं भी बोला, अभी इसकी सत्संग में जाते हैं, इतना संतुष्टि इतनी आनंद मिलती, वो लोग है ना उनको इतना आनंद मिल रहा, तो बोला हाँ ठीक है उनको आनंद मिल रहा तो मैं भी जाती हूँ। वहां पर जाके कुछ भी नहीं बताया जाए, इवन भगवान भी नहीं बताया जाता है कि मैं अक्सर पूछती हूँ, यहाँ पर कुछ माताजियां जाती हैं सत्संग में, बोलती हूँ आपको करने के लिए क्या बोलते हैं, तो बोला बोलते हैं कि आपको सबसे प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, और सास के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन प्यार से बात करके फिर उद्देश्य क्या बताती हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, बोला कुछ नहीं उद्देश्य है, बस आपको जीना सिखाते। जानवर हो, जानवर को भी पता होता है कि अपने बच्चे के साथ प्यार करना पड़ता है,
अपने बच्चे को प्यार से रखना होता है, उसके साथ गुस्से से बात नहीं करनी होती है। एक जो बिल्ली होती है ना, वो भी एक चूहे को जब दांत से उठाती है ना तो उसको खाने के लिए उठाती है, लेकिन अपने बच्चे को उन्हीं दांतों से उठाती है सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। तो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें ये ज्ञान तो वैसे ही होना चाहिए। वास्तव में तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो जहां से तुम्हें प्राप्त होता है उस ज्ञान में जाना चाहिए ना, तुमको वहां से ज्ञान एकत्रित करना चाहिए। और मुझे क्या बोलेंगे कि दीदी वो भी आपकी तरह बताती हैं, सब इतनी अच्छी सी बातें बताती हैं। ठीक है, मेरी तरह बताती हैं, मगर ये बताए कि भगवान कौन है? मतलब खाली भगवान नहीं बताती बस, मैंने कहा ये बताए कि भगवान के पवित्र नाम का जप कैसे किया जाता है, किस कौन सा मंत्र जप किया जाता है। बोला नहीं, मंत्र जप करने के लिए नहीं बता। फिर क्या सुन के आई? अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान के बारे में नहीं बताया गया, अगर तुम्हें तुम्हारे मंत्र के बारे में बताया नहीं गया, तो फिर जाकर जूते घिसाने के फायदे क्या हुए? है ना, इतने कभी से तुम लोग जा रहे हो, अभी तक भगवान के साथ तुम्हारी भेंट नहीं हुई, तो फायदा क्या हुआ ऐसी जगह पर जाने का, ऐसे सत्संग को सुनने का जहाँ पर बस खाली तुमको अच्छी नैतिक बातें बताई जा रही है। वास्तव में वो अच्छी बात अच्छी आपके लिए कल्याणकारी हो ही नहीं सकती जो कृष्ण से रिलेटेड ना हो। जब तक आपका संबंध आपके भगवान के साथ नहीं स्थापित किया जा रहा है, वो सभा चाहे कितना ही आपको शिक्षण दे रही है, लेकिन वहां पर आपको वास्तविक जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। और ये स्त्रियां इतनी इनोसेंट होती हैं, बस जो भी उनको बता दिया जाता है, ये व्रत रखो वो व्रत रखो। वास्तव में देवी देवताओं के इतने ज्यादा व्रत होते हैं कि कोई उनको कर भी नहीं सकता। कोई कितना करेगा, एक क्या करेगा तो दूसरी बोलेगी इसका करो, तीसरी बोलेगी इसका करो, तो कितना करेगा। वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण जो है उनको अगर हम संतुष्ट कर लेते हैं तो समस्त देवी देवता जो कुछ भी है, निराकार है, परमात्मा है, जो कुछ भी है वो संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से यथा तरु मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, भागवत प्रमाण देती हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से समस्त उसके पत्ते टहनियां और फल फूल सब संतुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता सारे भगवान के स्वरूप स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। और अंत में वो कहती हैं कि मेरे लिए आपका ज्ञान होना अशक्य है। कथम पश्ये मही स्त्रिय, बहुत ही विनम्रता के साथ कह रही है कि मैं तो स्त्री हूं, ना ज्ञान है मेरे अंदर और ना ही मैं आपकी सही मायनों में भक्ति कर सकती हूँ, मुझ में तो कोई गुण भी नहीं है, इसलिए हे प्रभु मैं तो केवल एक ही कार्य कर सकती हूँ, मैं केवल आपको प्रणाम कर सकती हूँ। इतनी महान स्त्री जो कि स्वयं साक्षात भगवान की इतनी सारी महिमा का बखान करने के बाद, जिनकी साथ में रहने से भगवान संतुष्ट होते हैं, जिनके पुत्रों का साथ देना भगवान अपना सौभाग्य समझते हैं, ऐसी महारानी कुंती अपनी दीनता को अपनी विनम्रता को बताते हुए भगवान को प्रणाम करने लगती हैं और कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वास्तव में भक्तों ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम भगवान को पूरा पूरा कभी नहीं समझ सकते, ना उनकी लीलाओं को और ना ही उनके वास्तविक स्वरूप को। लेकिन नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब है ये नहीं कि हम सारी जिंदगी बस भगवान को समझने में ही समाप्त कर दें। समझे या ना समझे फिर भी एक कार्य तो हमें करना ही है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और भगवान को सरेंडर करना है, भगवान की शरणागति होना, भगवान को प्रणाम करना है। और वही क्रिया आज हमें कुंती महारानी सिखा रही हैं कि किस तरह से भगवान को प्रणाम किया जाता है, भगवान को प्रणाम करने की शैली बता रही हैं। सबसे पहला प्रणाम करते हुए पहला शब्द उच्चारण करते हैं कृष्णाय। कृषि, कृष का मतलब होता है, कृषि का मतलब होता है धरातल, ये भूमि, और ऋण का मतलब होता है आनंद, जो आनंद के निधान है उनका नाम, उनका कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं जो कि समस्त जीवों को आनंद प्रदान करने वाली हैं। और उनका नाम है, अर्थात एक बार श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि वास्तव में भगवान का यदि कोई नाम पॉसिबल है ना, तो कृष्ण ही होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण नाम ऐसा है जो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कुंती महारानी कहती हैं कि आप क्या हो हे प्रभु, ये तो मैं समझ नहीं सकती, मैं तो स्त्री हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है, परंतु आप जो कुछ भी हो, आप अत्यंत ही आकर्षक हो, आनंद के घन हो, आपको प्रणाम करने से चित्त आनंदित हो जाता है, समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। कुंती महारानी यहाँ पर बता रही हैं भगवान को, कृष्ण जब आप हमारे साथ थे पूरे जीवन में मैंने अनेकों कष्टों का सामना किया, बहुत सारे कष्ट मेरे जीवन में आए, परंतु केवल आपका सानिध्य, आपका नाम, आपका सानिध्य ही ऐसा था जिसके द्वारा मुझे उन कष्टों में भी सुकून मिलता, उन कष्टों में भी मुझे आनंद आता। तो वास्तव में कृष्ण कहकर भगवान के सुप्रीम पर्सनैलिटी को यहाँ पर बतला रही हैं, लेकिन इससे उनका जी नहीं भरा और उनको ऐसा लगा कि कृष्ण तो कोई भी हो सकता है, कोई भी अपना नाम कृष्ण रख सकता है। तो कृष्ण की बात कहती हैं, वासुदेवाय, आप वासुदेव के पुत्र हैं। वासुदेव का मतलब होता है, वसुदेवाय का मतलब होता है वासुदेव के पुत्र। तो यहाँ पर बता रही हैं कि क्योंकि वासुदेव जी मेरे भाई हैं, तो कितना निकट का संबंध है आपका मेरे साथ। यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं कि भले ही आप नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, आप आदि पुरुष हैं, आपसे पहले और कोई नहीं, आपका कोई पिता तो हो ही नहीं सकता, और आप प्रकृति से परे हैं, परम ईश्वर हैं, फिर भी आप भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे भाई का पुत्र बनना स्वीकृत करते हैं, आप मेरे भतीजे बनना स्वीकार करते हैं। अर्थात भगवान या भगवान को कुंती महारानी बता रही हैं कि आप भले ही कितने महान हैं, भले ही हम जैसे तुच्छ प्राणी आपको नहीं समझ सकते, लेकिन आप प्रेम के बस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं कि आप वासुदेव के पुत्र, वास्तव में वासुदेव कितने भाग्यशाली हैं मेरे भाई, जिनके यहाँ पर आप स्वयं आदि पुरुष भगवान जो हैं वो पुत्र बनकर आए हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली, और उनके साथ साथ मैं भी भाग्यशाली, क्योंकि मैं उन महान भाई की बहन हूँ और जिसके कारण आप मेरे भतीजे बने हैं। तो इतना निकट का संबंध है मेरा आपके साथ। इतना बोलने के बाद कुंती महारानी ने सोचा कि वसुदेव तो महाराज सूरसेन के पुत्र थे, तो उनकी तो दूसरी भी रानियां थी, कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि उनकी माता कोई और होंगी। तो वहां पर कुंती महारानी बोलती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, वास्तव में भगवान मेरे भाई वसुदेव से ज्यादा अधिक जो भाग्यशाली हैं, वो तो मेरी भाभी देवकी हैं, जिनके गर्भ में आपने रहना स्वीकार किया। वास्तव में भक्तों, एक पुत्र का स्नेह अपनी माता के साथ पिता से ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि पुत्र जो है वो कितने टाइम तक अपनी माता के गर्भ में रहता है, और माता अपने खून के द्वारा, उनकी माता जो भोजन खाती है उसी भोजन से उस संतान की पुष्टि होती है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है देवकी मैया का कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को उनके कोख में उन्होंने रहना स्वीकार किया, और साक्षात सारे देवता आए थे उनके गर्भ की स्तुति करने के लिए, स्वयं कंस ने भी देखा था, और वसुदेव जी भी कहते थे कि जब से कृष्ण गर्भ में आए, मतलब जब से कृष्ण उनके गर्भ में आए थे, तो देवकी मैया की छवि एकदम इतनी अट्रैक्टिव हो गई थी, उनको उनके चेहरे पर इतना नूर, इतना आकर्षण आ गया था। तो ये वास्तव में पारब्रह्म परमेश्वर जो सच्चिद आनंद विग्रह है, जो प्रकृति से परे हैं, आदि पुरुष हैं, उनका कितना बड़ा ये उपकार है हम जीवों पर कि वो किसी को, किसी जीव की भक्ति से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। और आगे कुंती महारानी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, कि वास्तव में तो मेरे भाई और भाभी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली तो नंद महाराज हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपने जन्म लिया, मेरे भाई को आपने अपने पिता होना स्वीकार किया और देवकी मैया के पुत्र होना स्वीकार किया, लेकिन जो बाल लीलाओं से आनंद प्रदान किया वो तो नंद महाराज को, नंद जो कि गोप हैं, यहाँ पर दर्शा रही हैं कि भगवान होते हुए भी, त्रिलोकी के नाथ होते हुए भी आप एक गोप के घर पे रहना स्वीकार किए। एक गोप जो, यानी कि भगवान कितने सरल हैं कि थोड़ी सी भक्ति से केवल प्रसन्न हो जाते, ये नहीं देखते कि मैं यहाँ हालांकि राजा थे वसुदेव, और लेकिन उन राजा और महारानी के साथ वो ज्यादा नहीं रहे। जन्म लेते ही वो गोकुल चले गए और नंद गोप कुमार आए, नंद महाराज के साथ रहे और अत्यंत ही प्रेम का आदान प्रदान किया आनंद महाराज के साथ। अपना पुत्र जो प्रेम है, एक पुत्र को, एक बाप जो अपने पुत्र को बढ़ता हुआ देखता है, उसकी सारी बाल लीलाएं देखता है, उसको स्नेह जो पुत्र के द्वारा मिलता है वो सारा नंद बाबा को मिला, और नंद बाबा से भी अधिक प्रेम जो है वो भगवान का प्राप्त हुआ यशोदा मैया ने, उसका हम आगे दूसरे श्लोक में बताएंगे। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का मतलब होता है इंद्रियों को आनंद देने वाले। वास्तव में गोविंद के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। गौ कहते हैं इंद्रियों को, साथ में गौ कहते हैं गौओं को। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदया है कि वो गौओं को, ऐसे भगवान हैं जो त्रिलोकी के नाथ हैं, फिर वो गौओं की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। गौओं के साथ भगवान का बहुत बहुत स्नेह होता है, और उसी के साथ साथ गौ इंद्रियों का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, यानी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि हमारा धर्म हमें इंद्रिय तृप्ति से रंजित रहने के लिए कहता है कि इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ पर कैसे भगवान को कहा जाता है कि इंद्रियों को तृप्त करने वाले, है ना? ऐसे भगवान कहकर यहाँ पर कुंती महाराज ने उन्हें क्यों संबोधित किया है? वास्तव में तो इंद्रियां जो हैं वो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, शास्त्रों में क्या सिखाता है कि भौतिक वस्तुएं चाहे आपको कितनी भी प्राप्त हो जाएं, परंतु संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य भला कितना संतुष्ट हो सकता है? अगर किसी को खाने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, कोई बहुत ज्यादा खाने में रुचि रखता है, तो कोई कितना खाएगा, भले कितने सारे, बहुत सारे उसके पास आइटम्स बना के रख दिए जाएं, लेकिन वो खाएगा कितना? दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, ज्यादा से ज्यादा पांच रोटी, फिर बस उसका पेट भर जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस उस आनंद को अडॉप्ट करता रहेगा, कंटिन्यूस उसको खाता जाएगा, नहीं रुके। ऐसा अगर करने का प्रयास भी कोई करेगा ना, तो भी वो बीमार हो जाएगा, उसका जिस्म ये सब सह नहीं सकेगा। कोई भी आनंद है, चाहे कोई सेक्सुअल आनंद हो, चाहे खाने का आनंद हो, चाहे घूमने का, कोई भी संसार में आनंद की वस्तु को आप यदि इस भौतिक जगत में प्राप्त करके आनंदित, अनलिमिटेड लेना चाहते हो ना, तब नहीं कर सकते। ऐसा किया था एक इजिप्ट के राजा थे, उसने सोचा था, उसको बहुत खाने का शौक होता था, तो उसने अपने पास कुछ चिकित्सक रखे थे, डॉक्टर्स जैसे वैद्य होते हैं ना, उसने रखे थे। वो बोलता था बस एक साथ हर टाइम पे मैं खाता रहूं, एक टाइम में ऐसा ना हो कि मैं खाए बगैर रहूं, कंटिन्यूस मुझे खाऊं ना, मैं वेट नहीं करना पड़े, मुझे ऐसा कोई समय नहीं हो कि मैं कुछ खाऊं नहीं। तो बोला इस तरह से तो पॉसिबल नहीं ना, आपका पेट भर जाएगा। तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स को बोला था, जो चिकित्सक थे ना उसके साथ, तो बोला जब मैं खाऊं मेरा पेट भर जाए तो मुझे कोई ऐसी औषधि दो कि मैं फौरन से विमिट करके वो सारा निकाल दूं और दूसरा खाऊं, वापस से जैसे ही मेरा पेट भर जाए तो मैं उसको निकाल दूं और दूसरा। तो ऐसे ही करते थे। फिर उन्होंने एक डॉक्टर ने डॉक्टर्स ने ऐसी औषधि जड़ी बूटियों से उसको बना के दी। लेकिन वास्तव में पता है क्या, डॉक्टर उसको बता रहे थे क्योंकि वो इतना बीमार हो गया खाते 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 कि अब उससे खाया ही नहीं जाता, मतलब अपच हो गया। अब बगैर अगर उसको दवाई भी नहीं देते थे तो भी उसको बीमार हो जाता। तो वास्तव में क्या होता है, खाने की क्रिया ऐसी नहीं कि मेरा पेट भर जाए तब तक मैं खाऊं और जब पेट खाली हो जाए तो फिर, इतना इसका लिमिटेड बात नहीं है। बल्कि उस खाने से, जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमारी एनर्जी जो है वो हमारे एक एक अंग को प्राप्त होती है, और उसको जब डाइजेस्ट होता है और जब सारे अंगों में वो सारी जो न्यूट्रिशंस है वो सब पहुंचती है, उसके बाद जब इसके लिए बहुत बड़ी क्रिया करनी पड़ती है। हृदय पेट के अंदर एक सिस्टम भगवान ने वैश्वानर अग्नि के द्वारा रखा है, जो अन्न को पचा कर डाइजेस्ट करके पूरे शरीर को पहुंचाती है। तो ऐसा यदि हम कोई भी भौतिक आनंद कंटिन्यूस लेना चाहेंगे तो हमारा वो शरीर है ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन गोविंद ऐसे हैं जिनके भगवान के पवित्र नाम का आनंद, पवित्र लीलाओं का आनंद, भगवान की कथा का रस, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के माधुर्य का, प्रेम का जो आनंद है वो हम जितना जितना लेते जाएंगे उतना उतना अधिक आनंद बढ़ता जाएगा। भौतिक वस्तुओं का आनंद क्या है, जितना जितना आप खाते जाओगे उतना उतना वो कम होता जाएगा। जैसे आपको रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है, आप एक रसगुल्ला खाओगे बहुत आनंद है, दूसरा खाओगे बहुत, तीसरा खाओगे बहुत अच्छा आ रहा है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां, बस अभी तो रसगुल्ला देख के उल्टी आ रही है, नहीं नहीं मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, मुझे सच्ची में रसगुल्ला नहीं खाना। मतलब जितना जितना आप उसको ग्रहण करोगे ना, कोई भी बस आप, हम हर आनंद का नाम नहीं लेते लेकिन कोई भी भौतिक वस्तु है उसको जितना जितना आप प्राप्त करोगे उतना उतना उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान का जो आनंद है, भगवान से रिलेटेड, भगवान का जो रस है, जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, जो माधुर्य है, जो जितना ज्यादा ज्यादा करता जाएगा ना उसको उतना उतना अधिक आनंद आता जाएगा उसमें। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज बताते हैं कि यहाँ पर कुंती महारानी, क्योंकि भगवान के साथ सबका संबंध जोड़ते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदनाय च, देवकी मैया के लाडले हैं, नंद गोप कुमाराय, नंद जो के गोप नंद और समस्त गोपों के लाडले कुमार हैं, और गोविंदाय, गोविंदाय यहाँ पर वास्तव में ये वो नाम है जो कि इंद्र के द्वारा भगवान को प्राप्त हुआ था, जब इंद्र ने वर्षा की थी और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तब इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दिया था। लेकिन यहाँ पर गोविंद का एक अर्थ अलग चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि वो गोपियों के प्राण धन है। यहाँ पर वास्तव में आज कुंती महारानी हमें प्रणाम करने की शिक्षा दे रही हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया जाता है, कि भगवान का, भगवान को उस उनके साथ संबंध के साथ, गुणों के साथ भगवान का एक संबंध निर्माण करके भगवान को प्रणाम किया जाता है। भगवान को प्रणाम करना ही जीव का परम कर्तव्य है, लेकिन भगवान को किस तरह से प्रणाम किया जाता है वो सिखा रहे हैं कि जब आप भगवान को प्रणाम करो तो आपका भाव कैसा होना चाहिए। भगवान साकार स्वरूप में, भगवान भले ही आदि पुरुष हैं, समस्त प्राणियों के आदि हैं, प्रकृति से परे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान आपके प्रेम को, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि, तुम जो जिस भाव से मेरी शरण में आओगे मैं उसी भाव से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो भगवान को ये तो कुंती महारानी बता रही हैं कि भगवान कोई ऐसे नहीं है कि आपके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे ही सिखाते हैं, भगवान अलख निरंजन है, अलख है उनका, वो तो निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, अलख निरंजन, ऐसे आंखें बंद कर, अलग का मतलब है जिसे देखा नहीं जा सकता, तो फिर आंखें बंद करके क्या कर रहा हूँ, ये तो केवल एक नाटक है। भगवान प्रेम से रीझते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं मनुष्य जीव की प्रेम प्रेम को। भगवान यदि आप उसको अपना बेटा बनाना चाहते हो तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार हैं, यदि आप उनको अपना प्रेमी बनाना चाहते हो तो भगवान प्रेमी बनने के लिए तैयार हैं, यदि आप अपना सखा बनाना चाहते हो तो भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, केवल प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम से प्रसन्न हुए जग जाना, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि यहाँ पर कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को समस्त अवतारों से श्रेष्ठ मानकर उनको प्रणाम करती हैं और कहती है, जैसे अगर राम और कृष्ण में भी कंपेयर किया जाए तो राम भगवान जो है भगवान के ऐसे अवतार हैं जो शुरू से ही राजकुमार बनकर रहे और वो राजा की तरह ही उनका सम्मान, यानी कि उनके साथ कोई गेम नहीं खेल सकता था कि चलो ठीक है राम को जिस तरह से भगवान के साथ कृष्ण के साथ किस तरह से उसके ग्वाल बाल मित्र करते थे, कभी उनको हराते थे, कभी उनके पीठ के ऊपर बैठते थे, कभी कृष्ण को जूठा अपना खिलाते थे, इस तरह से कभी भी भगवान के भी सखा, भगवान श्री राम के भी सखा थे विभीषण सुग्रीव, लेकिन उनका भाव कैसा था कि वो राजा है, प्रणाम, हमेशा सेवक की बात ही, भले सखा थे परंतु फिर भी सेवक की तरह उनके साथ रहते थे, लेकिन कृष्ण के साथ उनके दोस्त के साथ मतलब किस तरह व्यवहार करते थे, श्री राम के साथ कभी भी कोई स्त्री जो है वो इतना फ्रैंक नहीं बात कर सकती थी, केवल उन्होंने एक पत्नी व्रत रखा था और सीता मैया के साथ ही सदैव रहते थे, लेकिन गोपियां कृष्ण के साथ कितना स्नेह करती थी, किस किस तरह से गोपियों के साथ लाड़ करते थे, उनके हर एक बात को हर एक इशारे को समझते थे और उसको पूरा करते थे, मतलब भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना, भगवान के कृष्ण अवतार, भगवान का जो साक्षात अवतार है कृष्ण जो कि साक्षात भगवान है, उनके साथ संबंध जोड़कर उसके अनुसार ही कार्य करना अत्यंत ही सुगम बता है। यहाँ पर इसने बता रही है कि भगवान के साथ यदि भगवान को प्रणाम भी करना है तो भगवान का एक परफेक्ट आइडेंटिटी के साथ, कौन कृष्ण, पहले बोला कृष्ण, कौन सा कृष्ण, वसुदेवाय, कृष्ण है वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र कृष्ण, अरे वासुदेव के पुत्र कौन से, देवकी नंदनाय, जो देवकी के पुत्र हैं, अरे वो देवकी के कौन से वाले पुत्र, तो देवकी तो 6 पुत्र पहले भी दे चुकी थी, मतलब जन्म हो चुका था, और 7वें पुत्र कौन से थे, बलदेव भैया जो कि रोहिणी के यहाँ पर गए थे, लेकिन नंद गोप कुमार है वो कृष्ण जो कि नंद के साथ रहे, और गोविंद आए जो गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं भगवान का नाम लेते हुए भी जिनको शर्म आती है वो कहते हैं वाव से वासुदेव, ग से गोविंद और न ह से हरि, क्या मतलब भगवान का सीधा नाम लेते हुए भी क्या शर्म आती है, भगवान को भगवान का नाम ही आपको इस संसार से तार सकता है, तो भगवान का पूरा नाम पूरी आइडेंटिटी के साथ पूरे सही शब्दों में भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे पता चले भगवान सुनते ही समझ जाए कि मेरा नाम। वैसे तो भगवान को किसी भी नाम से यदि हम पुकारते हैं तो अवश्य ही भगवान श्रवण सुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्र ने भगवान का नाम दिया है, भगवान उसी नाम को सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रेम होता है ना। अब ऐसा नाम जो कि भगवान ने रखा ही नहीं, भगवान के बहुत सारे विष्णु सहस्त्र नाम है, भागवतम है, अलग अलग नाम भगवान के बताए गए हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान के करोड़ों नाम है और सारी की सारी जो भगवान की शक्तियां हैं वो उनके नाम में समाई हुई है, लेकिन भगवान का पूरा नाम तो लिया जाए, खाली कोड वर्ड्स में कहाँ लिखा है कि भगवान के नाम का पहला वर्ड खाली भगवान को खाली बोलो वाह 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 या क क क, भगवान का पूरा नाम कृष्ण है, वसुदेव है, भगवान का नाम देवकी नंदनाया है, भगवान का नाम नंद गोप कुमार है, नंदलाल है, तो भगवान का पूरा नाम तो लेना चाहिए ना। तो कुंती महारानी आज हमें सिखा रही हैं कि भगवान के नाम लेकर उनको प्रणाम करना चाहिए। और आगे कहती हैं श्लोक नंबर 22, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। शब्दार्थ नमः नमस्कार है पंकज नाभाय भगवान को, जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। नाभि कमल को बोलते हैं, जो नाभि होती है ना उसको पंकज नाभाय, कि आपकी जो नाभि है वो पंकज के समान है, यानी कमल के समान है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो प्रणाम कर रही हैं, तो वास्तव में ये विधि है कि प्रणाम सदैव कहाँ से शुरू किया जाता है, चरणों से शुरू किया जाता है। लेकिन वो चरणों से शुरू नहीं कर रही है, डायरेक्ट से कहाँ से शुरू कर रही है, नमः पंकज नाभाय, डायरेक्ट से भगवान की नाभि से प्रणाम शुरू कर रही है। ये कोई तरीका नहीं होता है नाभि को, या आगे कह रही है पंकज नेत्राय, नेत्रों को, इस तरह से तो प्रणाम नहीं किया जाता है, चरणों में प्रणाम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी अपना भाव व्यक्त कर रही है कि क्योंकि भले ही भगवान परब्रह्म परमेश्वर हैं, भले ही प्रकृति से परे हैं, लेकिन अभी भगवान लीला कर रहे हैं मेरे भतीजे बनकर, तो अगर मैं उनके चरणों को स्पर्श करूंगी डायरेक्ट से तो वो लज्जित हो जाएंगे। हाँ, इसलिए अभी वैसे ही भगवान को प्रणाम कर रही हैं, उसी से ही भगवान को लज्जा आ रही है कि मेरी बुआ होकर मुझे प्रणाम करी, लेकिन अब डायरेक्ट से अगर चरण छुएंगी तो उनको ना ऐसे लगेगा कि नहीं, लज्जा आ जाएगी ना। इसलिए कुंती महारानी यहाँ से शुरू करती है नाभि से और कहती है नमः पंकज नाभाय, आपकी नाभि कमल जो कि कमल के समान है। वास्तव में पूरा का पूरा शरीर जो है वो भगवान का एक वास्तविक एक सुंदर कमल की तरह है, और उस कमल के अंदर भी अलग अलग कमलों को यहाँ पर दर्शाती हुई कुंती महारानी हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करा रही है। और यहाँ पर पंकज नाभाय से एक और बात व्यक्त होती है कि वो ये वही नाभि है जिसमें से कमल का फूल खिला था, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और इस समग्र सृष्टि का सर्जन किया था। क्योंकि भगवान के शरीर के अंगों को देखकर भगवान की लीलाओं का स्मरण हो आता है, तो इसी तरह से कभी कोई भक्त देखते हैं भगवान की छोटी वाली फिंगर को बांसुरी के ऊपर ऐसी रखी होती है, और फिर उनको ऐसा ध्यान आता है कि ये वही उंगली है जिस पर भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को पकड़ा था। और हर तरह से इस तरह से भगवान की कोई भी शरीर के अंग को देखकर भी लीला का स्मरण हो आता है। उसी तरह आगे कहते हैं नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। मालिने का मतलब होता है पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले, यानी कि यहाँ पर जैसे कुंती महारानी भगवान की नाभि कमल पर दृष्टि गई तो वहां पर देखा कि एक भगवान ने कमल के फूलों की माला भी पहनी हुई थी, तो फौरन से उधर देखकर बोलती हैं हे कमल की मालाओं से सुशोभित रहने वाले भगवान, क्योंकि अभी भगवान जा रहे थे ना रथ पर बैठकर, तो उन समस्त पांडवों ने भगवान की पूजा की थी भगवान को विदा करने के लिए, तो भगवान को कमल के फूलों की ताजा माला भी पहनाई थी, तो वो भी अभी भगवान की गले में लटक रही थी। तो फिर उसको उस पर फौरन कुंती महारानी की दृष्टि गई और कहने लगी नमः पंकज मालिने, और फिर थोड़ा सा ऊपर भगवान के मुख कमल को देखा और भगवान के नेत्र जो बहुत ही आकर्षक नेत्र भगवान बस देखते हैं, जिधर देख रहे होते ना भगवान, वो सारी वस्तुओं का पूरा ध्यान जो है वो भगवान की नेत्रों की ओर आकर्षित हो जाए। अभी भगवान भले कुंती महारानी भगवान की नाभि कमल को और भगवान की माला को देख रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान के नेत्रों ने कुंती महारानी को देखना शुरू किया तो कुंती महारानी की डायरेक्ट से नजर गई भगवान के नेत्रों की ओर और फौरन बोली, नमः पंकज नेत्राय, कि आपके नेत्र जो है वो भी कमल के समान है। तो भगवान के हर अंग को नमस्कार कर रही हैं, एक एक अंग का नाम लेकर कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, मैं आपकी नाभि कमल को नमस्कार कर रही हूँ। नमः पंकज मालिने, मैं आपकी माला को नमस्कार कर रही हूँ। नमः पंकज नेत्राय, मैं कमल जैसे आपके नेत्रों को नमस्कार करती हूँ। परंतु दिल नहीं रहा, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उनके मुख से, क्योंकि जैसे ही भगवान के नेत्रों की ओर देखा फिर वापस से अपनी दीनता को दर्शाते हुए उनके चरणों के ऊपर नजर गई। और वास्तविक भक्त, चाहे वो माता हो भगवान की, इस संसार में माता की लीला कर रही हो, बुआ की कर रही हो, या प्रेमी की कर रही हो, या जो भी भगवान के साथ संबंध इस संसार में उसको मिला हो, जिसके साथ भगवान उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक दीनता, वास्तविक दास भाव कि मैं वास्तव में आपके चरणों की दासी हूँ, वो कभी भी छुप नहीं सकता। राधा रानी से कृष्णा कितना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर राधा रानी उन्हें दर्शाती हैं कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ। और वास्तव में इस संसार में जो कुछ भी है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, भले हम कुछ भी हैं, भगवान के साथ कोई भी संबंध हो, लेकिन वास्तविक हमारा संबंध जो है वो दास भाव है। तो रहा नहीं गया कुंती महारानी से और कहने लगी, नमस्ते पंकजांग रहे, कि आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। कमल पुष्पों से अंकित चरण, यानी वो चरण जिनके तलवे के ऊपर, नीचे जो नीचे का हिस्सा है वहां पर कमल के पुष्प अंकित होते हैं, ऐसे चरणों को मैं नमस्कार करती हूँ। अनुवाद, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान गतिशील है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम जैसे प्रतीत हों, लेकिन वे अपने शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र यानी श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु यानी तीनों द्विज जातियों की दुष्ट संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियां शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गड्ढे यानी नाभि से कमल नाल फूटती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है, इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने आशा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, यथा मानसिक रूप, काष्ठ रूप, पदार्थ रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बालुका रूप। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसे शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्तगण उस ओर आकर्षित हों। ध्यानी लोग मन के भीतर पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग कहते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर दया दिखाने के लिए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है, अतएव किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है, जबकि वह वास्तव में शूद्रों तथा स्त्रियों या उनसे भी निम्न श्रेणी में होता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करके उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती महारानी ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु क्रम से होती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर रीति से समझाया कि हम भले ही उस समय कुंती महारानी के सामने भगवान प्रकट रूप में थे, लेकिन आज भी भगवान विग्रह रूप में हम सबके सामने। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो भगवान को नमस्कार करते कैसे हैं? मतलब यहाँ पर भगवान को नमस्कार करने की शास्त्र एक विधि बताता है कि भगवान को किस तरह से नमस्कार करना चाहिए। चरणों से शुरू करना चाहिए, फिर जांघों से, फिर धीरे 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 करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं है, तो भगवान को नमस्कार भी नहीं कर सकते। वो उनको पता ही नहीं है कि भगवान कैसे है, भगवान को कहाँ से। भगवान का वास्तविक स्वरूप है, भगवान के चरण हैं, भगवान के नेत्र हैं, भगवान सबसे सुंदर हैं। तो हमें इस स्वरूप को भगवान के स्वीकार करना होगा, भगवान के विग्रह स्वरूप को। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बहुत ही निम्न श्रेणी के लोग होते हैं जो भगवान के विग्रह को नहीं मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर दया दिखाने के लिए सर्वत्र ऐसे मंदिरों की स्थापना की है। क्या वो पागल है जो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं जिन्होंने विग्रह पूजा, नारद मुनि जो कि स्वयं नारद पंचरात्रिय में उन्होंने विग्रह पूजा के विषय में, आज हमारे कुछ लोग होते हैं शूद्र निम्न जिनके अंदर बिल्कुल बुद्धि भी नहीं होती है, वह क्या कहते हैं कि भगवान को मंदिर से निकालो, अब भगवान की जरूरत नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि भगवान की पूजा करना बंद कर दो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत ही अल्पज्ञ जीव होते हैं वो, बहुत ही निम्न श्रेणी के, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है जो भगवान को स्वीकार नहीं करते। वो कौन से धर्म का प्रचार करते हैं जिसमें भगवान को निकालकर वो प्रचार करना चाहते हैं? और उनसे भी ज्यादा बदबख्त वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों का प्रचार सुनकर उसको स्वीकार कर रहे हैं। जो तुम्हारे भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं उनके साथ बैठना दो क्या? उनकी शक्ल देखना भी आपके लिए वर्जित है। वास्तव में आज इस श्लोक में हमें व्यास देव जी बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप है, भगवान के चरण है, भगवान के नेत्र हैं, भगवान का सुंदर मुख कमल है, तो मनुष्य को धीरे 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 उसका दर्शन करना चाहिए और भगवान के स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का मत है और यही एक वास्तविक तरीका है भगवान को समर्पित करने का। हमेशा कहा जाता है कि भगवान के चरणों में भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, तो उस भगवान के जिसके चरण ही नहीं होंगे उसका कैसे आश्रय कोई ग्रहण करेगा। तो हमें भगवान के वास्तविक स्वरूप, अभी भगवद गीता में अर्जुन साक्षात भगवान से पूछते हैं, भगवान आप बताओ आपके ख्याल में दोनों में से कौन बेहतर है। अर्जुन कहते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। भगवान को अर्जुन ने कहा एवं सतत युक्ता है, जो कंटिन्यूस युक्त रहते हैं, किसमें, भक्तास्त्वां पर्युपासते, जो आपके साकार स्वरूप की भक्ति में कंटिन्यूस लगे रहते हैं, और ये चाप यक्षरम अव्यक्तम, और जो दूसरे होते हैं जो अव्यक्त निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तेषां के योगवित्तमा, उन दोनों में से वास्तव में योग विद्या में अतिक अधिक ज्यादा निपुण कौन है, आपके ख्याल में दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने साफ शब्दों में क्लियर स्टेटमेंट दिया है 12.2 में। भगवान कहते हैं मैयावेश्य मनो ये माम नित्य योग उपासते, मैया वेश्य मनो, जिसका मन मुझ में लगा रहता है, साक्षात मेरे साकार स्वरूप में लगा रहता है, नित्य युक्ता उपासते, जो सदैव मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेता, जिसको मेरे अंदर श्रद्धा होती है, मेरे विग्रह में मेरे साकार स्वरूप में जो श्रद्धा रखता है, ते में युक्त तमोमता, मैं वास्तव में उसको बेहतर उसको उन्नत मानता हूँ, मेरे द्वारा वो परम सिद्ध माना जाता है जो मेरे साकार स्वरूप की पूजा करता है। इतना सब भगवान ने कह दिया, उसके बावजूद भी यदि कोई भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है तो समझना चाहिए कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो कृपया आप सब साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।